नमस्कार श्रोताओं और जयंती जी आपको भी नमस्कार। लेकिन
जी।
क्या बात है, आज आप बहुत दौड़े दौड़े से चले आ रहे हो।
हाँ, मैं तो देख रही थी और मुझे ये लग रहा था कि कंवल जी मुझसे ये क्वेश्चन जरूर पूछेंगी। इस रास्ते पर ट्रैफिक इतनी बढ़ जाएगी किसने सोचा था। आपको पता है कंवल जी, आज से करीब 10-11 साल पहले जब मैं यहाँ आया करती थी तो चारों तरफ खेत दिखाई पड़ते थे, और कुछ ही सालों में ये क्षेत्र इतना
विकसित
हो
गया
गया
है।
है।
हाँ, वो तो है। आप क्षेत्र की बात कर रहे हैं, लोगों में भी विकास इतनी जल्दी दिखाई देने लगता है। अभी कल ही की बात है जब मेरी छोटी सी भांजी तस्कीरत गोदी में चढ़ने की इतनी जिद किया करती थी, और आज वो क्लास 7 में है और स्कूटी चलाकर घर के सब छोटे मोटे काम कर दिया करती है। सच में देखकर बहुत आश्चर्य होता है और खुशी भी होती है बहुत।
बस इसी को तो विकास कहते हैं, और आज हमारी चर्चा भी इसी विषय पर है।
तो विकास को मनोविज्ञान में हम किस प्रकार से समझ सकते हैं, इस पर हम चर्चा करें थोड़ी सी।
हाँ, एक्चुअली अगर देखा जाए तो विकास को परिवर्तनों की एक प्रगतिशील श्रृंखला कहा जाता है, जो कि क्रमिक रूप से होता है।
हाँ,
और परिपक्वता की लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है।
अच्छा अच्छा मतलब विकास के द्वारा जो है व्यक्ति में शारीरिक मानसिक वृद्धि और उसके साथ साथ उसकी शारीरिक क्रियाओं में पारंगतता में वृद्धि होती रहती है आपके अनुसार। अच्छा, तो हम परिवर्तनों की ये जो मध्य में जो संबंध होता है, इस पर थोड़ी सी बातचीत करेंगे जयंती जी।
हाँ, एक्चुअली परिवर्तनों के मध्य में बहुत निश्चित संबंध होता है, और अक्सर लोग ग्रोथ यानी वृद्धि और डेवलपमेंट यानी विकास में बड़ा कंफ्यूज होते हैं। तो मैंने सोचा कि चलिए हमारे शिक्षार्थियों को भी इन दोनों के विषय में जो
डिफरेंस जरूर
जो
बता
भेद है जो उसके बारे में वो बता दीजिए।
जरूर बता दें। हाँ,
क्या होता है कि ग्रोथ क्या होता है
और वृद्धि क्या होता है।
आपको क्या लगता है ग्रोथ क्या होता है?
ग्रोथ श्रोताओं, जो ग्रोथ है उसको हम इस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं, जैसे शारीरिक संरचना या आकार में बढ़ोतरी को वृद्धि कहते हैं।
बाल लंबे होना
या जैसे मानसिक सामाजिक बौद्धिक आदि पक्षों में परिपक्वता विकास कहलाती है। कोशिकाओं की गुणात्मक वृद्धि भी जो है वो अभिवृद्धि कहलाती है, जैसे कि आपने अभी बताया बालों का लंबा होना, ऊंचाई भार चौड़ाई ये सभी जो वृद्धि है ये सभी अभिवृद्धि के या जिसको हम ग्रोथ कहते हैं उसके लक्षण हैं। और अगर हम विकास की बात करें तो जैसे अभी आपने बताया कि जो भी प्रोग्रेसिव हमारे लक्षण हैं उसमें केवल हम जो वृद्धि के मात्रात्मक परिवर्तन है उसके साथ साथ हम गुणात्मक परिवर्तनों को भी रखते हैं।
अच्छा,
जैसे कि अगर हम देखें तो केवल हमारे मसल्स ग्रो नहीं कर रहे होते हैं, उससे रिलेटेड जो स्किल्स हैं उसमें हम पारंगत होते चले जाते हैं, धीरे धीरे उसमें एफिशिएंसी आती जाती है।
आपकी बात से मुझे एक शैल चतुर्वेदी जी की एक छोटी सी जो व्यंग है वो याद आई। एक बार शैल चतुर्वेदी जी ने, आप जानते ही हैं कि शैल चतुर्वेदी जी कैसे दिखते हैं, काफी अच्छे से स्वास्थ्य के हैं, तो एक बार वो अपने किसी बड़े बुजुर्ग के पास गए आशीर्वाद लेने के लिए। तो उन्होंने कहा कि खूब फलो और फूलो और विकास करो।
हाँ,
तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं तो फूल रहा हूँ और मेरी बीवी जो है वो फल रही है। तो कहीं पर वो विकास उनका, उन्होंने सोचा कि वो विकास है, वो फल रहे हैं तो फूल रहे हैं।
लेकिन श्रोताओं, क्या ऐसे फलना फूलना क्या सच में विकास है?
नहीं।
ये हम अगर वृद्धि और विकास को थोड़ा और समझे, दोनों के अंतर को, तो हम इसे जान जाएंगे कि वास्तव में वृद्धि या विकास क्या है। अभी हमने बात किया कि वृद्धि के अंतर्गत हमारे शरीर में मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं, जैसे कि हाइट बढ़ना या वेट बढ़ना, बालों का बढ़ना होना। इसी तरीके से विकास में जो है वो गुणात्मक परिवर्तन भी होते हैं, जैसे बालक चलना भी सीखता है, उठना सीखता है, बैठना सीखता है, पलटी मारना सीखता है, गर्दन संभालना सीखता है। इस तरीके से वृद्धि जो है वो बहुत संकुचित होती है, और इस क्योंकि इसमें ग्रोथ के सिम्टम्स भी शामिल हैं, तो इसमें इसको हम विस्तृत कहेंगे, क्योंकि इसमें ग्रोथ के जो क्वांटिटेटिव चेंजेस हैं और क्वालिटेटिव चेंजेस विकास के दोनों सम्मिलित हैं।
तो जैसे हम विकास, हम लोग इस तरीके से भी अगर समझ सकते हैं, अगर शहर के लिए ही हम लिया जाए तो सिर्फ शहर में लोगों का बढ़ना ही विकास नहीं होता, बल्कि सारी सुख सुविधाएं बढ़नी और अच्छी अच्छी सहूलियतें प्रदान करना, अच्छी संस्थाओं का खुलना, ये सारी चीजें जो है विकास में ही आता है। और शरीर के क्रम में अगर हम समझे या ह्यूमन के रिलेशन में अगर हम समझे तो हम जैसे एक अपने एक कोई शौक है, कोई चीज हम सीख रहे हैं, नृत्य सीख रहे हैं या गाना सीख रहे हैं या कोई अपना करियर विकास कर रहे हैं, यहाँ पर विकास जो है आपका ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहा है। आपने ये तो बता दिया कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में यानी कि वृद्धि और विकास में क्या फर्क होता है, पर आप जानती है कि विकास होता कैसे और इसके लिए कौन सी दो प्रक्रियाएं बहुत आवश्यक हैं?
जी बिल्कुल, इस पर हमको जरूर श्रोताओं से बात करनी चाहिए। मैच्योरेशन और लर्निंग, ये दो प्रक्रियाएं जो है वो महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं। वैसे तो और भी बहुत से कारक हैं जो विकास और वृद्धि को प्रभावित करते हैं, तो मैच्योरेशन और लर्निंग दो ऐसे कारक हैं जो जिनका विकास पर और वृद्धि पर बहुत प्रभाव पड़ता है।
तो जैसे अब मैच्योरेशन को अगर हम श्रोताओं को समझाना चाहूं, आपको कई बार घर में भी मम्मी पापा से जब आप कोई बचपन में कोई क्वेश्चन पूछते होंगे तो वो हमेशा ये कहते थे कि अभी तुम मैच्योर नहीं हुए हो, थोड़े से बड़े हो जाओ तो समझोगे। तो मैच्योरेशन यानी परिपक्वता का अर्थ है कि हमारे अंदर जो निहित गुण है वो अपने चरम तक पहुंच जाए। अब जैसे रीढ़ की हड्डी का काम है शरीर को सहारा देना, और सभी मनुष्य में रीढ़ की हड्डी भी मौजूद होती है, यहाँ तक कि एक नवजात शिशु में भी। लेकिन हम जब नवजात शिशु को अगर आप बिठाने की कोशिश करें या खड़ा करने की कोशिश करें तो वह संभव नहीं
हो पाता।
क्यों? क्योंकि उसकी स्पाइन होने के बावजूद उसका स्पाइन अभी मच्योर नहीं किया है, यानी परिपक्वता के अभाव में नवजात शिशु बैठ नहीं पाता। लेकिन वही शिशु 6 से 7 महीने में वह बैठने लायक हो जाता है क्योंकि उसका स्पाइन तब तक मैच्योर कर जाता है। तो मैच्योरेशन भी हमारे विकास और वृद्धि में बहुत सहायक होता है। इसके अलावा लर्निंग का भी इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। हमारे वातावरण में होने वाले जितने भी इंटरैक्शंस होते हैं या अंतःक्रिया के कारण हमारे व्यवहार में जो भी परिवर्तन होते हैं वो हमारी लर्निंग उसको प्रभावित करती है। जैसे चलना, दांत का निकलना, ये सब जो होता है ये परिपक्वता के कारण भी होता है। लेकिन कोई विशेष गाना गाना या नृत्य करना सीखना, ये सब लर्निंग। आप जब कहीं नई जगह जाते हैं, आप कोई लैंग्वेज सीखते हैं, ये सारी लर्निंग है। आप जो अपने जो एनवायरमेंट है उससे आप किस तरीके की इंटरेक्शंस कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है।
अच्छा, परिपक्वता और अधिगम का आपस में जो भी बहुत संबंध है। जैसे परिपक्वता और अधिगम की प्रक्रिया वैसे तो साथ साथ चलती रहती है, लेकिन दोनों एक दूसरे को प्रभावित करती है।
बिल्कुल।
परिपक्वता जो है वो सीखने के लिए एक रॉ मटेरियल का काम करता है। जैसे कि यदि व्यक्ति किसी क्रिया को सीखना चाहता है तो जब तक कि उसके लिए वो शारीरिक या मानसिक रूप से परिपक्व नहीं हो जाता तब तक वो ठीक प्रकार से उसे नहीं सीख सकता। इसके अलावा व्यक्ति जो है वो जीवन पर्यंत सीखता रह सकता है, लेकिन परिपक्वता की प्रक्रिया लगभग 25 वर्षों तक पूर्ण हो जाती है। है ना, जैसे कि आप ये मानिए कि हम एकदम बच्चा अगर नवजात है तो हम उसको ये नहीं कह सकते कि आओ हम इसे लिखना सिखा दें, जब तक कि उसकी उंगलियों का विकास पूरी तरीके से लिखने के लिए नहीं हो जाता। अगर हम इसका प्रयास बहुत जल्दी करते भी हैं तो उसके विकास पर इसका बुरा प्रभाव भी पड़ता है। इस तरीके से परिपक्वता और अधिगम दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए चीजें हैं।
हाँ। और कवल जी, यहाँ पर मैं अपने शिक्षार्थियों को ये भी बताना चाहूंगी कि उन्होंने मटेरियल में देखा होगा कि ग्रोथ को एक ग्रोथ कर्व से दिखाया जाता है।
जी बिल्कुल।
हाँ, तो अब ये ग्रोथ कर्व क्या होता है? अब ग्रोथ या वृद्धि को जानने के लिए ग्रोथ कर्व या वृद्धि वक्र भी बहुत सहायक होता है। इससे आप जान सकते हैं कि वृद्धि पहले 3 सालों में बहुत तेजी से होती है और लगभग 5 से 12 वर्ष में ये थोड़ा कम हो जाती है। आप देखते होंगे एक छोटे बच्चे कितनी जल्दी मैंने उनके जो डेवलपमेंट होते हैं वो आपको दिखाई पड़ते हैं, उनका बोलना, उनके किसी चीज को पकड़ना, हंसना, ये बहुत शीघ्रता से होता है।
हाँ जी,
5 से 12 वर्ष में ये थोड़ा सा कम हो जाता है और इसलिए इसको पठारीय अवस्था या प्लेटू स्टेज भी कहा जाता है। और शायद बच्चा क्या होता है कि इस अवस्था में आकर बच्चा जो अपने उसने जो शीघ्रता से सारी चीजें सीखी होती है उसको वो एसिमिलेट करता है या आत्मसात करता है, जिससे कि वो एक बेटर सोशल ह्यूमन बीइंग के रूप में वो डेवलप हो।
और हम इसीलिए इसे ग्रोथ कर्व कहते हैं क्योंकि हम जब इसको एक ग्राफ पर प्लॉट करते हैं तो वाई एक्सिस पर हम परसेंटेज ऑफ ग्रोथ दिखा देते हैं, प्लॉट करते हैं, और एक्स एक्सिस पर हम वर्षों में आयु दिखा देते हैं या अगर मंथ्स में हम कुछ चीज मेजर कर रहे हैं तो एक कर्व की फॉर्म में हमारे सामने एक फिगर बन के आती है, इसीलिए हम इसे ग्रोथ कर्व का नाम देते हैं। तो आइए अब हम सीखने के कुछ सिद्धांतों के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो सीखने का जो सबसे पहला सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो है डेवलपमेंट, जो है वो एक पैटर्न को फॉलो करके चलता है।
एक्चुअली सीखने के कवल जी 9 सिद्धांत हैं,
हाँ जी,
जो हम लोग जनरली अगर ब्रॉड कैटेगरी
में
बांट देते थे तो 9 सिद्धांत है जिसमें कि ये पहला कह रही है वो किसी एक पद्धति का अनुसरण करता
है, पैटर्न को फॉलो करता है। तो इसी पैटर्न को क्योंकि फॉलो करता है विकास, इसलिए हम उसके बारे में प्रिडिक्शन भी कर पाते हैं। जैसे कि बच्चे जो हैं पहले पासा पलटते हैं, उसको सीखते हैं पासा पलटना, फिर क्रॉल करना सीखते हैं, फिर खड़े होना सीखते हैं और फिर तब वॉक करना सीखते हैं। तो इस तरीके से वो कोई एक स्टेज को स्किप कर सकता है लेकिन पैटर्न या क्रम जो है वो एक ही रहता
है। नहीं।
तो इससे हम इसी तरीके से हम इसको प्रेडिक्ट भी कर पाते हैं, जिसका जो एक प्रिंसिपल हम आगे भी इसके बारे में पढ़ेंगे। और ये जो क्रम है ये 2 तरीके से चलता है, एक
बड़े इंटरेस्टिंग दो बड़े इंटरेस्टिंग तरीके हैं।
जैसे एक जो क्रम है जो फ्रॉम हेड टू फुट सर से पैर की तरफ विकास को दर्शाता है, इसे हम सेफेलोकॉर्डल
कहते हैं,
ऑर्डर भी कहते हैं। इसमें पहले व्यक्ति का सिर का विकास होता है। हम अगर छोटे बच्चे को देखें तो पहले आप उसको अगर गौर करिए तो पहले वो सर संभालता है, उसके बाद वो फिर अपनी बॉडी पर कंट्रोल कर पाता है, तब अपनी टांगों और तब अपने पैरों पर कंट्रोल सीखता है। तो इस तरीके से जो क्रम है वो हेड से फुट की तरफ चलता है।
और जो दूसरा होता है उसको प्रॉक्सिमो डिस्टल यानी केंद्रीय अक्ष से शीर्षस्थ क्षेत्र की ओर विकास कहते हैं। इसका बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, जब आप छोटे से बच्चे को देखिए, 1 महीने के बच्चे को देखिए, आप अगर क्लैप करें या बच्चे को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करिए तो आप देखेंगे बच्चा पूरा का पूरा घूम के आपकी तरफ घूम जाता है। लेकिन कुछ दिनों बाद जब आप थोड़ा सा और 4-5 हफ्ते बाद और 1 महीने बाद अगर देखेंगे और आपने फिर क्लैप किया तब देखेंगे बच्चा गर्दन घुमा के आपको देख रहा है। तो जो विकास होता है बच्चों में वो सेंटर से लिम्स की तरफ जाता है, जो सेंटर से एक्सट्रीमिटीज की तरफ जाता है। तो पहले बच्चा अपने बॉडी पे कंट्रोल करना सीखता है और फिर ग्रेजुअली अपने हाथ और पांव पे कंट्रोल करना सीखता है।
बिल्कुल। दूसरा जो सिद्धांत है विकास का, इसे हम कहते हैं कि बच्चा जो है वो जनरल से स्पेसिफिक की तरफ सीखता है, उसका जो प्रोग्रेशन है वो फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक होता है। इसमें बिल्कुल वही जैसे अभी आपने बताया कि पहले वो अगर किसी चीज को उठाना चाहता है तो पूरी बॉडी को झुकाता है, उसकी
पूरा जोर लगा देता है। छोटा सा बच्चा बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। अगर आपको भी बच्चों को देखिए ये सारे चीजें आपको विकास के जो सारे सिद्धांत है आपको अपने घर के आसपास के सभी छोटे बच्चों में आपको
नजर आएंगे। और अगर देखें तो यही विकास के सिद्धांत है जो हम अगर गौर करें तो हमें नजर आने शुरू हो जाते हैं। तो वो धीरे धीरे जो है वो स्पेसिफिक मूवमेंट्स हो जाते हैं उसके। इसी तरीके से अगर हम इमोशनल डेवलपमेंट भी देखें तो बच्चा पहले सभी आवाजों के जो भी तेज आवाज है उससे डरता है, या जो भी अननोन या अनजानी आवाजें हैं उसके लिए उस पर वो डर व्यक्त करता है। लेकिन धीरे धीरे उसके जो फियर है वो स्पेसिफिक हो जाते हैं, कुछ चीजों के लिए वो डरना सीखता है और बाकियों के लिए डरना नहीं सीखता। उसको पता हो जाता है कि ये चीज से मुझे डर लगता है, इससे नहीं। तो ये
इसीलिए आपने देखा होगा कि बच्चे जो है वो कई बार डरते हैं और कई बार नहीं भी डरते हैं। कई बार क्या होता है वो कुत्तों को भी देखकर उनके मुंह में हाथ डाल देंगे, या बिजली का अगर वो भी देखेंगे कि छोटा सा वहाँ पर कोई वायर या स्विच बोर्ड है वो जाकर उसमें उंगली डाल देंगे। उनके अंदर ये डिफ्रेंसिएशन नहीं होता, इसलिए वो जनरल से स्पेसिफिक की तरफ होता है और ग्रेजुअली सीखते हैं कि कहाँ पर भेद करना चाहिए, किससे डरना चाहिए।
हाँ जी। इस तरह से जो विकास का अगला सिद्धांत है वो ये है कि विकास जो है वो हमें एकीकरण की तरफ ले जाता है, इंटीग्रेशन की तरफ। तो एक बार जब बच्चा स्पेसिफिक या डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सेज सीख लेता है तब उसमें सिंथेसाइज करने की कैपेसिटी भी आ जाती है। और वो मतलब सिंथेसाइज करने का मतलब है कि वो एक तरीके से एक कंप्लीट या होल फॉर्म में चीजों को ग्रेस्प करता है, उसका एक कंप्लीट व्यू उसको मालूम हो जाता है, दिखाई देने लगता है। जबकि वो जैसे अगर हम लैंग्वेज डेवलपमेंट में देखें तो पहले वो छोटे छोटे वर्ड्स को बोलता है तो उसको अब वो सिंथेसाइज फॉर्म को यूज भी करता है,
मम्मा भूख, मम्मा आई, पानी
पानी
कुछ इस तरीके से करता है, लेकिन उसके बाद फिर वो कंप्लीट सेंटेंस
कंप्लीट
बोलने लगता है कि मम्मा पानी पीना है, भूख लगी है,
वो इंटीग्रेट करता है वो छोटे छोटे शब्दों को और लैंग्वेज फॉर्मुलेशन उसकी आ जाती है।
इसके साथ ही एक और चीज भी होती है कि विकास का एक और सिद्धांत जो है कि विकास उसमें निरंतरता होती है, ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर उसका बुद्धि का विकास हो रहा है तो शारीरिक विकास नहीं हो रहा है। विकास जो है समान रूप से निरंतर रूप से सारे क्षेत्रों में चलती
होता
रहती है, जैसे गवर्नमेंट की मशीनरी चलती रहती है और सारे डिपार्टमेंट्स अपने काम करते रहते हैं, उसी तरीके से हमारे शरीर के भी सारे डिपार्टमेंट्स अपने काम करते रहते हैं। ऐसा नहीं होता कि अभी दांत निकलना शुरू हो गया तो चलना रुक जाएगा, दांत भी निकलता रहता है, चलना भी चलता रहता है, दिमाग का उसका बौद्धिक विकास भी होता रहता है। और विकास जो है क्योंकि एक निरंतर प्रक्रिया है तो भ्रूणावस्था से यानी कि जन्म लेने के पहले से लेकर वृद्धावस्था तक ये चलता रहता है, कभी रुकता नहीं है। बाल झड़ गए तो फिर बाल आ जाएंगे, बाल पहले काले थे फिर बाल सफेद होंगे, ये सारा एक निरंतर प्रक्रिया में विकास जो है वो चलता रहता
है, विकास होता रहता है। बस कभी कभी क्या होता है कि किसी कारणों की वजह से विकास धीमा पड़ जाता है, जैसे कभी कोई अनहेल्दी एनवायरमेंट अगर बच्चों को मिलता है या वो बीमार पड़ गया या उसको न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिल पाता है तो इस वजह से कभी कभी विकास की गति धीमी हो जाती है, लेकिन इसकी निरंतरता बनी रहती है।
मैं साथ के साथ जब हम लोग विकास का सिद्धांत पढ़ते हैं या विकास का के चैप्टर को हम लोग पढ़ते हैं, एक चीज को हमेशा एक सिद्धांत भी है और एक सभी शिक्षार्थियों और सभी सुनने वालों को मैं इतना भी याद कराना चाहती हूँ कि विकास का दर जो है वो सभी में एक सा नहीं होता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर किसी का बच्चा जो है वो 8 महीने में चलना सीख गया है तो सबके बच्चे 8 महीने में चलना सीखेंगे, तो कोई बच्चा 8 महीने में भी चलना सीखता है तो कोई 1.5 साल में भी चलना सीखता है, तो इसलिए एक रेंज ऑफ टाइम हम हमेशा प्लस माइनस 6 मंथ्स का लेकर चलते हैं। हम जब ये डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स की बात करते हैं, आप डॉक्टर के पास भी जाएंगे, अक्सर माएं बड़ी परेशान होकर जाती कि अरे हमारे मेरे साथ वाली की तो बेटी जो है बोलने लगी है, मेरी बिटिया अभी तक बोल नहीं रही है। तो डॉक्टर्स बोलते हैं कि कोई बात नहीं, आप उसको उस तरीके का एनवायरमेंट दीजिए, आसपास बात कीजिए, तो आपका बच्चा भी पिकअप कर जाएगा।
जयंती जी, आपकी बात से याद आया, थोड़े दिनों पहले हमारे स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट बहुत परेशान होके आए और वो किस चीज को लेकर परेशान थे, क्योंकि जो उसके बाकी के फ्रेंड्स हैं उन सब की मुझे आ गई थी थोड़ी थोड़ी, लेकिन उसकी नहीं आई थी। तो जिसके पीछे उसको सब चिढ़ाते थे और उसकी भी चिंता का विषय यह था कि ऐसा क्यों है कि जो मेरे 4 फ्रेंड्स हैं उन सबकी तो हल्की हल्की सी मुझे हो गई है लेकिन मेरी नहीं है। मुझे तो उस पर भी ये सिद्धांत लागू होता है कि सब में विकास
का अलग होता है, क्योंकि इसमें कहीं पर आपका जेनेटिक्स या आपकी जो वो है जेनेटिक संरचना जो है या आनुवंशिक की जो प्रभाव होता है वो भी बहुत जरूरी होता है, और कई बार ये बच्चों में बड़ी एंजाइटी क्रिएट करता है। मुझे याद है मेरे एक स्टूडेंट को कहता है, मैम हम लोग तो पढ़ते हैं कि वॉइस ब्रेक होता है एडोलेसेंस में, मेरा तो वॉइस ब्रेक नहीं हुआ, इसका मतलब मैं नॉर्मल नहीं हूं। मैंने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये कुछ क्राइटेरिया होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास आपको नहीं हुआ है तो आप में कोई नॉर्मेलिटी में कोई कमी है,
कमी आ जाती है। यही चीज हाइट पर भी लागू होती है, कोई कोई अपनी जो मैक्सिमम हाइट है वो पहले ले लेते हैं और कभी कभी दूसरे जो बच्चे हैं जो अपनी एज के बच्चों से छोटे थे वो कुछ ही दिनों में उनसे लंबे निकल जाते हैं,
बिल्कुल,
क्योंकि वो बाद में अपनी मैक्सिमम हाइट लेते हैं।
जो विकास का छठा सिद्धांत है वो कहता है कि शरीर के विभिन्न भागों का विकास भी विभिन्न दर से होता है। तो सारी चीजें अभी अब आगे हम ग्रेजुअली और भी जितने पीसीपीज करेंगे, हम पियाजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट के स्टेजेस के बारे में भी बताएंगे, तो हर चीजों का हर जो शरीर के एक वो जो ग्रोथ का टाइम होता है वो हर उसका डेवलपमेंट का एक डिफरेंट होता है। तो ऐसा नहीं है कि सारे क्योंकि उसके वो अच्छी समझ बोलने लगी है तो पूरी तरीके से बड़ी क्यों नहीं हो रही है, ये भी साथ के साथ देखना, ये ऐसा नहीं होता। शरीर के हर विभिन्न भाग का विकास भी विभिन्न दर से होता है,
अलग अलग दरों से होता है। जैसे आप देखो कि बच्चों के अर्ली ईयर्स में न्यूरल डेवलपमेंट स्पीड से होता है जबकि जेनाइटल ग्रोथ उतनी नहीं होती, जबकि एडोलेसेंस में जेनाइटल ग्रोथ रेट हाई होता है। तो इस तरीके से विकास का जो सातवां सिद्धांत है कि जो विकास के दौरान बच्चे जो हैं वो पहले सेल्फ सेंटर्ड दिखाई देते हैं, उसके बाद वो अदर्स ओरिएंटेड हो जाते हैं,
मतलब केंद्रवाद से पर केंद्रवाद
की तरफ हो जाते हैं। पहले उनको सिर्फ ये नजर आता है कि मैं क्या सोचता हूँ, वो उसी हिसाब से पूरी वर्ल्ड को परसीव करते हैं। अगर रात को उनको 2 बजे चॉकलेट खाना है
तो खाना है।
आप उनको कितना भी समझाइए और परिस्थिति को कि क्यों नहीं चॉकलेट आ सकती है, लेकिन उनको यही लगता है कि आप मना कर रहे हैं तो उसमें आपका कोई जरूर इंटरेस्ट है, नहीं तो चॉकलेट तो आ सकती है। तो इस तरीके से धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता है तब उसे दूसरे का पर्सपेक्टिव भी समझ में आने लगता है।
मुझे याद है इसमें भी एक बड़ी अच्छी अकबर बीरबल का किस्सा हुआ करता था कि उसमें अकबर को यही था कि दुनिया में, अकबर ने बीरबल से पूछा कि दुनिया में किसको समझाना सबसे मुश्किल है, तो बीरबल ने ये कहा कि एक छोटे से बच्चे को समझाना।
हाँ,
क्योंकि वो छोटे से बच्चे को, क्योंकि वो उस समय इतना अपने ही वर्ल्ड में रहता है कि उसको दूसरे की पर्सपेक्टिव नहीं समझ में आती है। उसको अपने तरीके से सीखना होता है। इसी से विकास परतंत्रता से स्वतंत्रता की ओर ले जाता है, और ये बड़े जेन्युइन सा भी एक प्रिंसिपल है कि आप जैसे जैसे ग्रो करते हैं, जैसे जैसे आपके अपने बॉडी लिम्स पर कंट्रोल होता जाता है, तब आप अपने ऊपर ज्यादा आपका फोकस होने लगता है और आप दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं रहते। स्वतंत्रता,
ऑटोनॉमी आ जाती है।
आप अपने काम अपने आप कर लगते हैं। पहले मम्मी खाना खिलाती है, छोटे बच्चों को आपने देखा होगा माँ या बड़े घर के बड़े लोग खाना खिलाते,
कपड़े बनाने, खाना खिलाने, हाँ, चले के सारा काम के लिए वो डिपेंड रहते हैं
और फिर धीरे धीरे बच्चे खुद उसको करने लगते हैं। और विकास भविष्य सूचक यानी कि प्रेडिक्टेबल भी होता है, और इसीलिए आपको ये, मतलब आप लोग ये समझ सकते हैं कि सिद्धांत जो है हमको कितने महत्वपूर्ण है हमारे लिए, क्योंकि हम एक आइडिया दे देते हैं कि कब क्या
अपेक्षा करा जाए बच्चे से।
तो अगर जैसे अगर सपोजिंग आप में ये लगता है कि किसी बच्चे में या किसी आपके घर के ऐसे किसी में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो हो सकता है आपको वहां पर हेल्प की भी जरूरत पड़ सकती है। शायद हो सकता है कहीं पर न्यूट्रिशनल ग्रोथ नहीं, न्यूट्रिशनल जो इनपुट है वो ठीक से नहीं है, या एनवायरमेंट में कुछ चेंज लाने की जरूरत है। तो ये आपको एक मोटे तौर से आपको एक आइडिया दे देता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट किस तरीके से
चल रहा है। इसके अलावा ये पेरेंट्स और टीचर्स के लिए भी बहुत जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो जब बच्चों या कोई भी जो बच्चे के साथ काम कर रहा है, क्योंकि बच्चों से हमें, बच्चों को सिखाने के लिए हमें ये देखने का आइडिया हो जाता है कि बच्चा अब इस एक्टिविटी जो हम उसे सिखाने जा रहे हैं उसके लिए वो परिपक्व हो चुका है या नहीं। अगर वो परिपक्व हो गया है तब तो हम उसको सीखने के अवसर दें, स्टिमुलेट करें, और अगर नहीं हुआ तो हम थोड़ा इंतजार करें परिपक्व।
बिल्कुल, और कई बार ऐसा तो नहीं ना कि आपको 12th का कोर्स जो है क्लास 6 में या 11-12 साल में आपको 12th का कोर्स दिया जाता है। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखकर कि आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट कितना हुआ है, अकॉर्डिंगली आपको पढ़ाई का भी जो करिकुलम या सिलेबस जो होता है वो आपके लिए उपलब्ध कराया जाता है। अच्छा कंवल, ये बताइए कि विकास के विषय को हम और कैसे जान सकते हैं, इसको हम किस तरीके से हम इसका अध्ययन कर सकते हैं,
अध्ययन कैसे कर सकते हैं। तो विकास का अध्ययन करने के लिए हमारे सामने 2 अप्रोचेस रहते हैं। हम 2 अप्रोचेस से विकास को अध्ययन कर सकते हैं। पहला है क्रॉस सेक्शनल और दूसरा है लॉन्गिट्यूडिनल अप्रोच।
अच्छा,
अगर हम क्रॉस सेक्शनल की बात करें तो आप इसमें हम क्या करते हैं कि अलग अलग एज के बच्चों का सैंपल ले लेते हैं और उसके विकास का अध्ययन करते हैं। जैसे कि मैंने मानसिक विकास का अध्ययन करना है कि बच्चों की मेंटल ग्रोथ किस तरीके से हो रही है, तो मैंने 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल और भी जो आगे के वर्ष हैं जब तक कि मैं अध्ययन करना चाहती हूँ, सब आयु के लोगों का सैंपल मैं ले लेती हूँ और उस पर अध्ययन करके उनके जो फीचर्स हैं उसको नोट करती हूँ। तो इससे जो है ये मुझे एक फायदा हो जाता है अगर मैं क्रॉस सेक्शनल से स्टडी करूँ, क्योंकि हमें बहुत लंबा समय स्टडी में नहीं लगाना पड़ता,
और कम खर्चीला भी होता है,
कम खर्चीला होता है, और बहुत सारा रिकॉर्ड जो सालों तक मुझे संभालना, अगर मैं एक ही बच्चा लेके स्टडी करूंगी तो बहुत सारा रिकॉर्ड रखना पड़ता है, और कभी कभी एक ही बच्चे को स्टडी करते वक्त तो वो अवेलेबल नहीं होता हमेशा स्टडी के लिए। सपोज मैं जिस बच्चे पर स्टडी कर रही हूँ वो कहीं बाहर चला गया या कोई बीच
स्कूल जाना है,
या बीच में कोई ऐसा फैक्टर आ गया जिसने उसकी ग्रोथ पर प्रभाव डाला, तो एक जनरल जो जनरलाइजेशन है वो नहीं मैं नहीं कर पाऊंगी।
लेकिन इसके साथ एक और प्रॉब्लम भी है, क्योंकि आप ये सैंपल आप कुछ लेते हैं तो आप इसका बहुत ज्यादा जनरलाइजेशन करने में भी मुश्किल होता
है। बिल्कुल,
क्योंकि आप लिमिटेशन है कि आप सोचिए कि मैं दिल्ली में हूँ, मैं दिल्ली के बच्चों को लेकर एक सैंपल लेकर स्टडी करती हूँ, मैं उसको जनरलाइज नहीं कर सकती कि इंडिया के सारे भागों के बच्चे जो है इस उम्र के वो ऐसे ही होंगे। तो ये एक प्रॉब्लम होता है क्रॉस सेक्शनल के साथ, जो कि शायद लॉन्गिट्यूडिनल के साथ नहीं होता है। लेकिन लॉन्गिट्यूडिनल जो है बहुत खर्चीला होता है, समय बहुत ज्यादा
लगता है।
लॉन्गिट्यूडिनल अप्रोच थोड़ा समझाएंगी?
हाँ, इसमें जयंती जी सेम जो ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन है या सेम सैंपल को हम कहेंगे, अगर सेम जो केसेस हैं या चिल्ड्रन है उनको लेके हम कई वर्षों तक अध्ययन करते हैं। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर हम देखें तो पियाजे को हम देख सकते हैं। उन्होंने जो आई हैंड कोऑर्डिनेशन का स्टडी किया, उन्होंने अपनी ही बच्चे पर किया, उसको उन्होंने शुरू से ही ऑब्जर्व करना शुरू किया और लॉन्गिट्यूडिनल अप्रोच से उसको स्टडी।
लेकिन वो क्योंकि अपने घर की बच्ची थी तो उनके लिए आसान हो गया। अब मैं अगर बोलूं कि कंवल जी आप अपने घर के बच्चों को मेरे घर में भेज दीजिए और मैं लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी करने लगूंगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी।
तो इसका मतलब ये है कि दोनों अप्रोचेस की अपनी अपनी
लिमिटेशंस भी हैं और अपने फायदे भी हैं। तो कहीं पर ये डिपेंड करता है कि हम विकास को किस तरीके से स्टडी करना चाहते हैं। तो ये तो विकास के जो हम प्रकृति के बारे में हो गए हैं, चलिए विकास के क्षेत्र के बारे में भी कुछ बातचीत कर लेते हैं।
बिल्कुल। अब जयंती जी, जब हम किसी बच्चे को देखते हैं तो अक्सर हमको अपना बचपन याद आने लगता
है।
हम कितना दौड़ते भागते थे, शरारत करते थे, रोते थे, हंसते थे, सब कुछ याद आ जाता है। लेकिन अब जब हम बड़े हो गए हैं तो हमारा व्यवहार बिल्कुल तब से बदल गया है, वैसे रहे ही नहीं जैसे छोटे में थे। तो इस तरह से जीवन में हमारे अलग अलग समय पर अलग अलग विकास के चरण या स्टेजेस आते रहते हैं। तो इनको हम कितने स्टेप्स में करेंगे जयंती जी, कितने स्टेप्स में बात सकते हैं?
हाँ, अगर एक मोटे मोटे तरीके से बोला जाए तो जन्म से पूर्व जो कि गर्भस्थ जो स्टेज है, चरण है, वो गर्भधारण से जन्म तक के समय को जन्म पूर्व कहा जाता है। पूर्व शैशव और शैशवस्था हो गया आपके मैंने जन्म से लेकर 3 वर्ष तक।
अच्छा,
ठीक है, ये आपके 2 स्टेजेस इसमें कवर हो जाते हैं। इसके साथ में पूर्व बाल्यावस्था जिसको कि चाइल्डहुड प्री चाइल्डहुड कहते हैं, वो 3 से 6 वर्ष
तक है। 6 वर्ष तक है
बाल्यावस्था जो बचपन का जो बोला जाता है, वो 6 से 12 वर्ष होता है। क्योंकि 6 से 12 वर्ष इसलिए किया जाता है क्योंकि इसमें मोरलेस बच्चा स्कूल जाने लगता है, एक उसका एक सोशल इंटरेक्शन भी होने लगता है। इसकी जो नेक्स्ट जो स्टेज है उसको किशोरावस्था कहा जाता है, जो कि एक बड़े अपने आप में एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेज है। और इसको 12 से 20 वर्ष तक के जो अवस्था को किशोरावस्था कहा जाता है। उसके बाद और इंटरेस्टिंग स्टेज है, वो है युवावस्था, वो है 20 से 30 वर्ष, जबकि आपका जिंदगी के बड़े सारे उसमें आपके माइलस्टोन्स होते हैं, बड़े सारी चीजें आपको, आपका करियर होता है, आपका अपना लाइफ सेटल करने का होता है, पढ़ाई ऑलमोस्ट ऑल कंप्लीट होता है, एक जॉब में सेटल होने की बात होती है। तो ये भी अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टेज है। उसका नेक्स्ट स्टेज जो है वो प्रौढ़ावस्था बोला जाता है, जो कि 30 से 50 वर्ष तक का तेज कहा जाता है। परिपक्व प्रौढ़ हम कहते हैं 50 से 65 वर्ष के लोगों को परिपक्व प्रौढ़ कहा जाता है, और जो आयुगत प्रौढ़ है वो 65 से ऊपर के जितने भी लोग हैं उनको आयुगत प्रौढ़ कहा जाता है।
अच्छा श्रोताओं, ये जितने भी चरण अभी जयंती जी ने बताए आपको, इन सभी अवस्थाओं में जब हम होते हैं, जब हम इसमें से गुजरते हैं, तो हर अवस्था में या हर चरण पर हमसे कुछ कुछ अपेक्षाएं की जाती हैं, जैसे कि हम कुछ निश्चित कार्यों को करने लगे,
डेवलपमेंटल माइलस्टोन।
हाँ जी, जैसे कि एक बच्चे से अपेक्षा की जाती है कि वो स्कूल जाए, पढ़ाई करे, और एक वयस्क से अपेक्षा होती है कि वो कार्य करे, नौकरी करे और परिवार का पालन करे। वास्तव में लोग प्रत्येक चरण पर सुगमता से और सफलता पूर्वक कुछ व्यवहार, प्रतिमान और कुशलताएं सीख जाते हैं, तो इससे लोगों की अपेक्षा बन जाती है कि ये इस कर ही लेना चाहिए इनको। है ना। तो इस प्रकार जो व्यक्ति की विशेष आयु से संबंधित सामाजिक अपेक्षाएं होती हैं, उनको हम विकासात्मक कार्य कहते हैं,
यानी कि डेवलपमेंटल टास्क कहते हैं। हैवी घोस्ट एक विकासात्मक मनोवैज्ञानिक थे, यानी कि डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने विभिन्न आयु वर्ग के विकासात्मक कार्यों की पहचान की। विभिन्न चरणों में विकासात्मक कार्य कैसे होते हैं, चलिए थोड़ा सा हम करते हैं। जैसे जन्म से 6 वर्ष तक के बच्चों से क्या अपेक्षाएं की जाती है, चलना फिरना सीखना, ठोस भोजन खाना, ये नहीं कि निपुल वाला बॉटल लेकर ही बैठे रहे दूध का बॉटल, बल्कि खाना खाना, बातचीत करना लोगों यानी कि सोशल इंटरेक्शन, मलमूत्र त्याग करने में अपना ऑटोनॉमी लाना, उसमें ये नहीं कि मम्मी ही आकर उनको हेल्प करवाएगी, रादर वो अपने आप ही वो करने लगेंगे, जेंडर्स के बीच में अंतर करना सीखना, और सही और गलत के बीच में अंतर करना सीखना, जो कि डेंजरस है या क्या चीज है, और ये बच्चों को बहुत अच्छे से ये बच्चे सीख जाते हैं।
सीख जाते हैं
6 से 12 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं, 6 वर्ष उनके जो डेवलपमेंटल टास्क है वो है साधारण खेलों के लिए शारीरिक कुशलताओं को सीखना, जैसे दौड़ने के लिए किस तरीके से सांस को अपना कंट्रोल करना पड़ता है, किस तरीके से दौड़ा जा सकता है, जो शारीरिक कुशलताओं की अपेक्षा की जाती है। अपनी उम्र के दोस्तों के साथ रहना सीखना। अब इसमें अब जो डेवलपमेंटल टास्क हैं ये भी आपको हेल्प करते हैं एज टीचर्स या एज अपने घर के बड़े, आपको हेल्प करता है कि अगर इस तरीके इसमें बहुत ज्यादा कोई वेरिएशन है तो कहाँ पर हो सकता है कि आपको कहीं पर हेल्प लेने की जरूरत हो सके। लिंग की भूमिका के बारे में जानना, लिंग की भूमिका मतलब कि आपसे क्या अपेक्षाएं की जाती है
एज अ बॉय और गर्ल,
एज अ बॉय और गर्ल आपसे क्या अपेक्षाएं की जाती है, कैसे अपने आप को साफ रखना है, कैसे अपने आप को घर में अपने को नीट एंड क्लीन रखना है। पढ़ने लिखने तथा गणना करने संबंधित बेसिक कुशलताओं का विकास, दैनिक जीवन के लिए जो आवश्यक कॉन्सेप्ट्स हैं उनका विकास, उनको पता होना चाहिए कि हमको बाहर जाने का मतलब क्या होता है। और इसीलिए एक और नया कॉन्सेप्ट भी इसमें वो किया जाता है कि ये एक ऐसा एज है जिसमें बच्चों को आप गुड टच बैड टच के बारे में भी बता सकते हैं, ऐसा नहीं है कि उसको आप बड़े होने पर ही समझाए। दैनिक क्रियाकलापों में स्वतंत्रता का विकास, यानी कि अपने आप से करना आना,
इंडिपेंडेंसी आ
जाना, साथ ही नैतिकता तथा मूल्यों का विकास। नैतिकता मूल्य जो है वो आप किसी को बैठकर नहीं सिखा सकते हैं, नैतिकता मूल्य आप वैसे भी समाज में जिस तरीके के मूल्य होते हैं या घर में जिस तरीके के पारिवारिक मूल्य होते हैं बच्चे उनसे भी सीखते हैं। और यही समय है जब बच्चे एक अवधारणा बनाते हैं कि क्या गलत है क्या सही है। अगर घर में ज्यादा सब लोग सच पर एम्फोसिस करते हैं तो बच्चा ये समझता है कि सच बोलना जो है एक अपेक्षित उसके साथ एक अपेक्षित व्यवहार है,
अपेक्षित है, तभी इसे हम विकासात्मक कार्य कहते हैं।
बिल्कुल। साथ ही अब जो मैं बोल रही थी कि बहुत इंटरेस्टिंग स्टेज है वो है किशोरावस्था। किशोरावस्था को वैसे भी इसमें एक इसको एक ऐसा फेज कहा जाता है जो कि ट्रांजिशनल फेज है, ना उसमें आप बच्चे रह जाते हैं ना उसमें बड़े रह जाते हैं। मुझे याद है मेरे एक स्टूडेंट की बात, वो आकर मेरे को बहुत परेशान हुआ, बहुत फ्रस्ट्रेट हुआ, आकर बोलता है कि मैं अपने माँ बाप से बात नहीं करना चाहता हूँ। मैंने कहा क्या हो गया, कहते नहीं मैं मम्मी के साथ मार्केट गया था तो मैंने कहा कि मम्मी बड़ा सुंदर जीप है मुझे खरीद कर दे रहे, तो मम्मी ने कहा तुम बच्चे थोड़ी रह गए हो जो जीप मांग रहे हो, 9th क्लास का बच्चा। तो कहता है कि ठीक है, मैं तो चुप हो गया, लेकिन घर में आकर मम्मी पापा कुछ बातें कर रहे थे तो मैंने कहा कि मम्मी मैं भी बैठूं, मैं भी, तो बोले कि नहीं तुम ऐसे में नहीं बैठ सकते, अंदर जाओ हम बड़े बात कर रहे हैं, तुम अभी बड़े नहीं हुए हो। तो मैं क्या हूँ, मैं बच्चा हूँ कि मैं बड़ा हूँ? तब मैंने उसको समझाया कि बेटा ऐसा है, इसी को किशोरावस्था कहा जाता है और इसलिए इसमें बहुत सारी आइडेंटिटी क्राइसिस जैसे मुश्किलें भी कई बार आती है क्योंकि समझ नहीं पाते हैं कि हम कहाँ पर हैं,
कहाँ पर स्टैंड करते हैं। लेकिन श्रोताओं इसी को हम एंजॉय भी कर सकते हैं क्योंकि यही एक अवस्था है जो बच्चों में भी मिक्स हो जाती है और बड़ों के साथ भी मिक्स हो जाती है और दोनों जगह अपनी जगह बना सकती है अगर ये क्षमता अगर आप में है तो।
तो किशोरावस्था का एक डेवलपमेंटल जो टास्क बहुत इम्पोर्टेंट है वो अपनी शारीरिक बनावट को स्वीकार करना। अक्सर किशोरों में बहुत तरीके के इस तरीके से वो आते हैं कि हम दूसरे के जैसे गोरे होने चाहते हैं, हम उसके जैसे पतले होना चाहते हैं, फरानी हीरोइन बहुत पतली है मुझे भी उसके जैसे जीरो फिगर लेकर आना है, या अपने को मेरे को कैसे सुंदर और बनना है। तो शिक्षार्थियों, सुंदरता बाहरी नहीं होती है, याद रखिएगा। पढ़ाई लिखाई और आपकी जो अपने मूल्य होते हैं वो आपको सुंदर बनाते हैं। तो अपनी शारीरिक बनावट को स्वीकार करना भी एक बहुत इम्पोर्टेंट डेवलपमेंटल टास्क है किशोरावस्था का। साथ ही अधिक परिपक्व संबंध स्थापित करना, क्योंकि ये एक ऐसा स्टेज है जो आपको आपके एडल्टहुड के लिए प्रिपेयर कर रहा है। तो कहाँ पर किसके साथ किस तरीके के सोशल रिलेशंस मेंटेन करने चाहिए, आपको क्या क्या जिम्मेदारी और क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने चाहिए, ये भी इसके डेवलपमेंटल टास्क
है।
साथ ही भावात्मक स्वतंत्रता प्राप्त करना, आप कैसे अपने आप को हर बात के लिए दौड़कर मम्मी के ऊपर डिपेंडेंट या उस तरीके से ना होकर कुछ अपने भी कॉन्फ्लिक्ट्स और इश्यूज जो है उनको रिसॉल्व करना। आर्थिक स्वतंत्रता के लिए तैयारी, क्योंकि जब तक आप 18 साल के नहीं होते हैं,
क्योंकि अब करियर की भी तैयारी करनी है,
बिल्कुल, और 18 साल के नहीं हुए हैं तो आप तब तक नौकरी नहीं कर सकते हैं, लेकिन नौकरी करने के लिए जो प्री डिजायरेबल रिक्विजिट्स हैं उन सब की
तैयारी इस वक्त होने
तो आगे आप किसी पर डिपेंडेंट ना हो, इसके लिए अभी से पढ़ाई लिखाई पर बिल्कुल जोर
देना जरूरी है। इसके अलावा किशोरावस्था में जिसकी शुरुआत 6 से 12 वर्ष में ही हो जाती है, कि आपकी सेक्स ओरिएंटेड जो भी रोल्स हैं वो क्या आपसे उम्मीद करी जाती है, जिस पर हर समाज में ये अपेक्षाएं अलग अलग होती हैं। जैसे हम अपने आसपास देखेंगे तो लड़कियों से क्या अपेक्षित है कि हम वो आए और घर में खाना वाना बनाएं, इस तरीके की अपेक्षा करी जाती है, और लड़कों से बाहर के काम करने की अपेक्षा करी जाती है। तो इस तरीके की अपेक्षा को ध्यान में रखते हुए हम उनको काम भी ऐसा ही असाइन करते हैं। तो आप देखोगे कि क्या, और वो एक माँ की अच्छी भूमिका निभाए, बच्चों को पाले, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। इसी तरीके से जब एडोलेसेंट में हम होते हैं तो तब भी हमसे इस तरीके की अपेक्षाएं होना शुरू हो जाती है कि अगर आप एक लड़की हैं तो आपको क्या करना चाहिए, और अगर आप एक लड़का है तो क्या करना चाहिए। और ये हर समाज, हर क्षेत्र में आपको ये अपेक्षाएं अलग अलग नजर आएंगी।
लेकिन आप क्योंकि पढ़ने लिखने वाले वर्ग से हैं तो आपको ये भी जानना आपके लिए बहुत जरूरी है कि हम इस तरीके से अगर डिफरेंस करके चलेंगे तो जिंदगी में बहुत आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हाँ, किसी समय जब समाज फिर अपना स्थिरता ला रहा था तो उस समय इस तरीके से रोल डिवीजन किया गया था जिससे कि समाज आसानी से चलता रहे। पर आज की डेट में कि ये काम सिर्फ लड़कियों के लिए या ये काम सिर्फ लड़कों के लिए, वो और उतना रह नहीं गया है। तो जानना जरूरी है, और इसमें मैं कहूंगी कि आप अपने साथ साथ दूसरे के जेंडर के रोल्स के बारे में भी जानें, और जहां तक हो सेंसिटिवली उसको भी करें। ऐसी बात नहीं है कि आज की डेट में सिर्फ लड़कियों के लिए ही स्पेसिफिक कुछ काम होते हैं। साथ ही किशोरावस्था के लिए एक और बहुत इम्पोर्टेंट डेवलपमेंटल टास्क है कि विवाह और एक पारिवारिक जीवन के लिए तैयारी करना, क्योंकि ये भी एक बहुत अपेक्षित है कि आप अपने प्रोजेनी को आगे बढ़ाएंगे, आप अपने जो वंश को आगे बढ़ाएंगे, या आप, क्योंकि समाज में जब हम किसी भी समाज में रहते हैं तो उस समाज के लिए भी हमारी कुछ जिम्मेदारी होती है, और उस जिम्मेदारी को हम तभी कर सकते हैं जब हम अपने सारे स्टेजेस को इक्वली अच्छे तरीके से कम्प्लीट कर सकते हैं।
अच्छा श्रोताओं, विकास के अलग अलग पक्ष हैं। जैसे अभी तक हमने विकास के अलग अलग चरणों की बात करी, डेवलपमेंटल टास्क की बात करी, इसी तरीके से विकास के अलग अलग पक्ष भी हैं जिनमें ये चरणबद्ध विकास होता रहता है। और ये अलग अलग पक्ष हैं शारीरिक विकास, गतिक विकास, संज्ञानात्मक जिसे हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी कहते हैं, भाषा का विकास, व्यक्तित्व का विकास, मनोसामाजिक जैसे साइकोसोशल कहते हैं, संवेगात्मक और नैतिक विकास, और इसके अलावा हमारा व्यवसायिक विकास भी इसी में सम्मिलित होता है। इसके बारे में थोड़ा थोड़ा और डिटेल से जानेंगे। शारीरिक विकास की अगर बात करें तो शारीरिक विकास से हमारा तात्पर्य होता है जैसे शरीर की लंबाई, भार इत्यादि की, अगर इसके विकास में की हम इसमें चर्चा करते हैं, अगर इसको हम बहुत संक्षिप्त में देखेंगे, पहले 3 वर्षों में बच्चों के आकार में बहुत तेजी से वृद्धि होती है, और पहले वर्ष में लंबाई दोगुनी हो जाती है और वजन जो है बच्चे का वो 3 गुना हो जाता है, और दूसरे वर्ष में जो बच्चे का वजन है वो इसका 1/4 और बढ़ जाता है, तीसरे वर्ष में लंबाई भार दोनों में कम वृद्धि होती है, और प्री स्कूल है जब बच्चा स्कूल जाने से पहले की जो उसकी एज है उसमें उसकी लंबाई 2-3 इंच तक बढ़ जाती है। 6 से 12 वर्ष में बच्चे जो है वो थोड़े से लंबे और पतले हो जाते हैं, और जो लड़कियां हैं वो लड़कों से थोड़ी सी मोटी लगती हैं, और ये मोटापन जो है उनका मोटापन या हल्का सा जो थोड़ा सा उनका हैवीनेस है वो उनकी प्रौढ़ता तक रहता है। लड़कियों में लड़कों से पहले ही ग्रोथ स्पर्ट या यौवनारंभ हो जाता है, और इसीलिए कभी कभी आप देखोगे कि जब आप क्लास में पढ़ रहे होते हैं तो आपके जो साथ में लड़कियां होती हैं इस एज में वो आपसे जल्दी लंबी हो जाती हैं और बड़ी लगने लगती हैं और लड़के छोटे लगते हैं। लेकिन थोड़े ही समय में आप एक दो सालों में देखोगे कि लड़के जो हैं वो लड़कियों से भी लंबे हो जाते हैं और बड़े लगने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो ग्रोथ स्पर्ट है, यौवनारंभ है, वो लड़कियों में पहले होता है और लड़कों में बाद में। किशोरावस्था का समय शैशव काल और प्रौढ़ता के बीच का समय होता है। यह अवस्था 12 वर्ष से शुरू होकर 20 वर्ष के अंत तक होती है। यह अवस्था जब तीव्र गति से जिसमें दैहिक विकास हो रहा होता है, तो इस दौरान जो बच्चे जो व्यक्ति है उसके यौन अंग परिपक्व हो जाते हैं और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स या जिसे हम द्वितीय की यौन विशेषताएं भी कहते हैं वो दिखाई देने लग जाती है। इस चरण पर पहुंचते पहुंचते एक तीव्र दैहिक वृद्धि का अनुभव होता है। इस दौरान आपको स्वयं महसूस होता है कि हमें इतने चेंजेस हो रहे हैं, और कभी कभी इतनी बच्चे जो हैं वो घबरा जाते हैं और उसको हैंडल नहीं कर पाते हैं। तो इस वक्त श्रोताओं ये जानना बहुत जरूरी है कि ये बिल्कुल नेचुरल होता है, नॉर्मल होता है। तो इस वक्त अगर आप अपने आप को ठीक से नियंत्रित कर लेते हैं और इसके साथ ठीक से कोप अप कर लेते हैं तो आपका जो व्यक्तित्व है वो बहुत अच्छे से निकल करके आता है। 20 और इसके बाद 20 से 50 वर्ष की आयु के समय व्यक्ति की ऊर्जा जो है वो अपनी पीक पर होती है, और इसके बाद धीरे धीरे से जो ऊर्जा है वो कम होने लग जाती है। 65 वर्ष की एज के बाद वृद्धावस्था में शारीरिक रूप से थोड़ी सी दुर्बलता आने लगती है और शरीर के लचीलेपन में भी कमी होने लगती है।
लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज और अपने श्रोताओं को बताना चाहूंगी कि ये जो हम लोग आपको उम्र का एक वो दे रहे हैं, एक रेंज दे रहे हैं, ये जरूरी नहीं है कि सभी में एक प्रकार से हो। मैं ऐसे बहुत सारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के और आप समाज में ऐसे बहुत सारे लोग को जानती हूँ कि जो आज 84-85 ईयर्स के भी हैं, लेकिन फिर भी वो हमसे ज्यादा मजबूत और हमसे ज्यादा कार्य में अपने सक्षम है। तो ये सारे ये आपको एक बता रहे हैं कि हो सकता है कि ये इस समय में हो सकने की है, लेकिन अपने खान पान, अपने रेगुलर एक्सरसाइज, अपने शरीर के कंट्रोल से आप इनको आगे पीछे डेफर भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि 65 साल हो गए तो आपके शरीर के अंगों में जो है वो आना शुरू हो जाएगा। वेयर एंड टियर थ्योरी है, लेकिन आपको अपने रेगुलर एक्सरसाइज और खान पान से आप इसमें बदलाव भी ला सकते हैं।
वही जैसे मैंने अभी किशोरावस्था में बताया, बिल्कुल इस पर भी यही करते हैं। लेकिन ये जो हम एज इस वक्त आपको एज रेंज बता रहे हैं, इसमें आपको अगर आप देखोगे तो कहीं कहीं पर जैसे मैंने 20 से 50 वर्ष की आयु कहा, तो कहीं पर आपको देखने मिलेगा कि 25 से 55 भी लिखा हुआ है। इसके अलावा ये जो हमने एज स्पैन आपको बताया है, ये वो है जो एक एवरेज ग्रुप ऑफ जो सैंपल लेकर जिन पर अध्ययन किया जाता है उस पर पाया जाता है।
एक्सेप्शंस हमेशा होते हैं
और आपका लाइफ स्टाइल क्या है ये बहुत कुछ डिपेंड करता है।
इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं जिनको 40 साल की उम्र में भी हार्ट अटैक
हो जाता है, और इसका वजह कहीं ना कहीं ऐसा है हमारा लाइफ स्टाइल है,
किस तरीके की स्ट्रेस लेकर चलते हैं।
क्योंकि आजकल हमारा जो रूटीन है वो पूरा दिन बैठ के काम करना और एक्सरसाइज कुछ नहीं करना, खाना पीना में भी हमारी जो कोताही होती है, उसकी वजह से हम जो है वो 65 साल की एज के सिम्टम्स 40 साल में महसूस करने लग जाते हैं। तो ये सारी चीजों को हम ध्यान रखें तो हम इनको डिले कर सकते हैं, इसी को ही कोपिंग अप कहते हैं। इसके ऊपर हम अलग से सेशन भी ले सकते हैं।
बिल्कुल।
और जयंती जी, गतिक विकास के बारे में कुछ बताइए।
गतिक विकास मांसपेशियों के विकास और समन्वय से संबंधित होता है। ये साधारण से जटिल, जैसे कि अभी आपने डेवलपमेंटल प्रिंसिपल्स में भी जाना कि ये साधारण से जटिल की ओर चलता है, और शरीर में आनुपातिक बदलाव से बच्चों के व्यवहार पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। जैसे जब इनमें तेजी से विकास होता है तो उनका अस्थायी रूप से अपने शरीर पर नियंत्रण कम हो जाता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ उनका गतिक विकास भी अधिक नियंत्रित दिखाई देता है। अब जैसे अगर आप देखिए कि एक छोटा बच्चा जब बिस्कुट उठाता है तो अपने जोड़ों तथा कंधे और पूरे हाथ को हिलाकर वो बिस्कुट उठाता है, लेकिन जैसे जैसे बड़ा हो जाता है तो वो अपने सिर्फ दो उंगलियों में भी वो बिस्कुट को थामना शुरू कर देता है। तो ये जो सारी कुशलता है एक विशेष उम्र में हासिल होती है। अब जैसे एक मोर और लेस एक महीने में बच्चा सिर पर कंट्रोल करने लगता है। आप कभी किसी नवजात शिशु को देखिए, जस्ट न्यू बॉर्न शिशु को अगर आप उसको गोदी में लेने जाएंगे तो उसका सिर जो है ना बबुए की तरह हिलता ही रहता है,
डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो।
लेकिन एक महीना होते होते उसका अपने सिर पर कंट्रोल होने लगता है। 5 महीने में बच्चा करवट बदलना सीख जाता है। तो ये सारे जो है मोर और लेस आपको एक आइडिया देते हैं कि कौन सी एज में किस तरीके की गतिक विकास होती है। अब जैसे प्री स्कूल वाले बच्चे होते हैं उनकी आंख और छोटी मांसपेशियों में समन्वय करने लगते हैं।
हाँ,
छोटी मांसपेशियों में
जो आई हैंड कोऑर्डिनेशन है और स्मॉल मसल कोऑर्डिनेशन वो आ जाता है। हाँ, उनको अगर आप कहो कि एक गोला बनाओ तो वो बना देंगे पेंसिल से खींच।
और अभी आप देखेंगे कि जनरली आपके प्री स्कूल के जितने भी एक्टिविटीज होती हैं वो मोर और लेस इसी को ही ओरिएंटेड होती है। बच्चों को जूते में स्ट्रिंग डालने सिखाते हैं, बड़ा मजा आता है देखने में कि बच्चों को जूते के अंदर किस तरीके से आप अपने वो डालते हैं, स्ट्रिंग डालते हैं और जूते कैसे बांधते हैं, बटन बंद करना।
शिक्षार्थी ये जो क्रियाएं अभी जयंती जी ने बताई ये वास्तव में हम दो तरह के जो हमारी मोटर डेवलपमेंट है उसके लिए कर रहे होते हैं। पहली जो है वो है ग्रॉस मोटर और दूसरी
फाइन मोटर स्किल्स।
तो ग्रॉस मोटर में हम बड़ी मांसपेशियों के विकास के ऊपर ध्यान देते हैं जैसे, और उनको ऐसी क्रियाएं कराते हैं जैसे बॉल फेंकना, कूदना, साइकिलिंग। और जब हम छोटी मांसपेशियों के विकास की बात करते हैं तो हम उसको फाइन मोटर स्किल डेवलपमेंट।
और अगर आप अगर इस बात को थोड़ा सा और इस तरीके से भी ध्यान कर सकते हैं कि पहले जब शुरू में आप स्कूल में जाते हैं, फॉर्मल स्कूल में जाना शुरू करते हैं तो वो आपको लाइन खींचना सिखाते हैं, खाली लाइन, आड़ी तिरछी लाइनें खींचना सिखाते हैं। फिर पहले आप कैपिटल लेटर से शुरू करते हैं, उसके बाद स्मॉल लेटर्स लिखना शुरू करते हैं। तो हमेशा ग्रॉस से फाइन पे ही काम किया जाता है।
पहले ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट होता है तभी, जैसे हमने बार बार इस उदाहरण को लिया कि बच्चा पहले क्या करता है कि कोई चीज उठाता है तो पूरा का पूरा ही हिल जाता है, लेकिन धीरे से वो फिर बाद में अपनी दो उंगलियों से उसे उठाने लगता है। तो यही एक उदाहरण है इसका कि पहले ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट होता है उसके बाद धीरे धीरे फाइन मोटर डेवलपमेंट होने लग जाता है।
अब स्कूल जाने वाले बच्चों में गतिक कुशलताएं आ जाने के कारण उनमें मजबूती तीव्रता भी होने लगती है, जैसे रस्सी कूदना, साइकिल चलाना, बड़ी खुश होते हैं कि साइकिल चलाकर जाएंगे, डांस करेंगे, उसमें वो सक्षम भी होते
हैं। अच्छा जयंती जी, मुझे साइकिल चलाने से याद आया, जब मैंने साइकिल चलानी सीखी थी तो मैं साइकिल बहुत अच्छे से चला लेती थी, लेकिन एक प्रॉब्लम थी,
उतरना चढ़ना नहीं आता।
उतरना चढ़ना मुझे जब रोकती थी तो गिर के धड़ाम से गिरती थी। इसमें मुझे लगता था कि कोई अगल बगल दीवार या कोई खड़ा हो जिसके पास मैं रुकूं ताकि वो मुझे गिरने से बचा ले।
सही बात है, ये एक बहुत सी मतलब कॉमन सी चीज है लोगों को चढ़ना उतरना में, क्योंकि अगेन चढ़ना उतरना जो एक अगर आप देखेंगे इसमें ग्रॉस और फाइन दोनों ही काम है। हाँ, क्योंकि इसमें आपके बॉडी बैलेंसिंग और साथ के साथ आपको साइकिल बैलेंसिंग भी आनी चाहिए। हाँ, तो वो चीज होने में थोड़ा टाइम लगता है। आप साइकिल में अपने आप को बिठा तो लेते हैं और वो बैलेंसिंग सीख जाते हैं, लेकिन एक पेडल पे पैर रख के बैलेंसिंग करके उतरना वो अपने आप में बहुत बड़ा होता है। और अब जैसे आप थोड़ा सा आप हमारे शिक्षार्थियों को युवा प्रौढ़ावस्था के
बारे में बता दूं। मैं युवा प्रौढ़ावस्था जैसे नव वयस्कता भी कहते हैं, इस तक पहुंचते पहुंचते जो मोटर डेवलपमेंट है वो बहुत धीमा हो जाता है और 50-55 वर्ष की आयु में ये परिवर्तन बहुत कम नजर आते हैं। लेकिन फिर यहाँ पे आपकी बात जरूर मैं दोहराना चाहूंगी कि ये इस पर डिपेंड करता है कि आप कितना एक्टिव रहे हैं
और आपकी मानसिकता कैसी है। हम लोग तो बोलते हैं यार हम लोग बुढ़े हो गए हमको और मत सिखाओ, लेकिन सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। जब चाहे मैं अपने घर पे अपने फादर इन लॉ को देखती हूँ, वो आज 74 हैं पर उन्होंने मेरे बेटे के साथ बैठ करके पूरा कंप्यूटर सीखा है और आज वो मेरे से ज्यादा फास्ट टाइप करते हैं।
तो और ये एटीट्यूड की बात है। जयंती जी आपने नोटिस किया होगा कि आजकल लोगों ने साइकिल चलाना भी बंद कर दिया है, सब लोग गाड़ी में घूमना ज्यादा प्रेफर करते हैं, थोड़ी बहुत दूरी पर जाने के लिए भी गाड़ी निकालते हैं। वो ऐसा नहीं करेंगे कि उसको साइकिल को चला करके वहां तक चले जाएं, जबकि इससे कई फायदे होते हैं। आपका जो मोटर डेवलपमेंट है, वो मोटर एक्टिविटीज है वो होती रहती है, एक्सरसाइज हो जाती है, और इसके अलावा फ्यूल भी बचता है, एनवायरमेंट क्लीन रहता है। लेकिन अब साइकिल की तो बिल्कुल फैशन ही नहीं रहा, यही कहेंगे ना कि फैशन नहीं रहा।
नहीं नहीं, आजकल बल्कि मैं तो कहूंगी अब फैशन नया आ रहा है, अब तो लोग बड़े इन हो गए हैं, अच्छी वाली साइकिल चलाते हैं।
चलाते हैं तो बहुत अच्छी बात है शिक्षार्थी, आप अच्छी वाली चलाइए, लेकिन साइकिल चलाना हर तरीके से फायदेमंद है, वो अच्छी देखने में हो या ना हो।
चलिए थोड़ी सी संज्ञानात्मक विकास के बारे में भी बात कर लेते हैं। संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है मस्तिष्क की वृद्धि तथा बौद्धिक विकास कैसा हो रहा है। इसके अंदर मनुष्य के सोचने, तर्क क्षमता और संप्रत्यय यानी कि कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन का विकास भी जो है सम्मिलित है। अगर आप उसको करें कि ये मन के विकास से संबंधित होता है, जैसे एक बहुत इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिस्ट हैं पियाजे, उनके अनुसार मन की मूल इकाई को स्कीमा कहा जाता है। किसी वस्तु के वास्तविक तत्वों का एक अमूर्त प्रतिनिधित्व स्कीमा कहलाता है, आपका एक मेंटल पिक्चर बन जाता है। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको कहूँ कि जब आप पिक्चर देखने जाते हैं तो आपको पता है कि आप अपने मॉल तक जाएंगे, मॉल में जाकर आपको हॉल में जाएंगे, उसके टिकट काउंटर में जाएंगे, टिकट लेंगे और जाकर बैठ जाएंगे। पहली बार जब आप मॉल जाते हैं जरूर आपको पहली बार डिफिकल्टी होती है कि कहाँ से कैसे टिकट लेना है, बट नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स आपको पता है, आपका एक दिमाग में एक पिक्चर बन जाता है कि मुझे इसके बाद ये करना है। हर बार अपने आप को नए तरीके से नहीं समझाते, इसी को ही स्कीमा कहा जाता है, जहाँ पर एक एक आपका मेंटल रिप्रेजेंटेशन बन जाता है।
वास्तव में ये मेंटल रिप्रेजेंटेशन ही है जिसे हम स्कीमा।
हाँ, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, आप रिसेप्शनिस्ट को अपना नाम लिखाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, बाहर आते हैं, उनको पैसे देते हैं, कोई आपको हर बार नहीं बोलता है कि अब आप इसके बाद ये काम कीजिए। ये आपका एक स्कीमा है जो आपको फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है। इसी के साथ ही स्कीमा का जो प्लूरल है वो है स्कीमेटा। इसमें वो बौद्धिक संरचनाएं हैं जिसमें व्यक्ति द्वारा समूह में सामान्य विशेषताओं के आधार पर प्रत्यक्षीकरण की गई घटनाओं का संगठन सम्मिलित होता है। जैसे उदाहरण के लिए चेहरे के स्कीमा में बच्चे कुछ विशेषताएं देखते हैं, जैसे सभी मनुष्य के चेहरे में उनको कुछ एक विशेष तरीके से होते हैं। अब ये जब बार बार होने वाली मनोवैज्ञानिक घटनाएं हैं, उनका बच्चा स्थैर्य ढंग से उद्दीपक के रूप में वो वर्गीकृत कर लेता है कि ये मेरे परिवार के लोग हैं, ये मेरे दोस्त लोग हैं और ये अनजाने लोग हैं। ठीक है।
अच्छा, इसमें जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें दो मेन प्रिंसिपल्स हैं जिससे ये प्रभावित होता है। एक तो है ऑर्गेनाइजेशन या संगठन, दूसरा अनुकूलन या अडेप्टेशन। संगठन में हम उन सभी प्रक्रमों या प्रक्रियाओं को एक प्रणाली में रखते हैं। शुरू में शिशु का जो बच्चों का जो स्कीमा होता है वो बिल्कुल अलग तरीके का होता है बड़ों से, और बाद में जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं और एनवायरमेंट से उनका इंटरेक्शन बढ़ता चला जाता है, उसका स्कीमा एक बड़े व्यक्ति की तरह होने लग जाता है। और जयंत जी, मैं आपको बताऊं, कल जब हम टीवी पर एक प्रोग्राम देख रहे थे तो प्रोग्राम था कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट हो जाती है और हमारे जीवन में इलेक्ट्रिसिटी की क्या क्या इम्पोर्टेंसेस है। तो जो मेरा 6 साल का भतीजा है वो पूरे डिस्क्रिप्शन को, एक्सप्लेनेशन को बड़े ध्यान से सुन रहा था, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा था। और उसको सिर्फ जो चीज समझ में आ रही थी वो ये था कि ट्रेन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है और जो शिप्स और एरोप्लेन है वो नहीं चलते। जबकि मेरा जो 14 साल का भतीजा है वो उस प्रोग्राम को अच्छे से समझ पा रहा था। इस तरह हम देखते हैं कि एडोलेसेंट की अंडरस्टैंडिंग और 6-7 साल के बच्चे की अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल अलग अलग हो जाती है। इसी तरीके से उसके स्कीमाज भी अलग अलग होते हैं, जो भी वो परसीव कर रहा है, जिस चीज को समझ रहा है वो एक अलग तरीके से उसको समझता है।
जैसे इसी में मैं आपको एक एग्जांपल लेती हूँ कि बच्चों में आजकल गर्लफ्रेंड्स का जो एक चर्चा है वो बड़ा कॉमन हो गया है। इवन 9-10 साल के बच्चे भी बोलते कि वो हमारी गर्लफ्रेंड है। अब वो गर्लफ्रेंड का कॉन्सेप्ट क्या, हाँ, उनका क्या होता है, उनका क्या स्कीमा है और एक्चुअली गर्लफ्रेंड का मतलब क्या है, इन दोनों के बीच में बहुत भेद होता है।
उसका स्कीमा अलग है, गर्लफ्रेंड और एक एडोलेसेंट का अलग है। है ना, और एक एडल्ट का अलग है।
तो अब अनुकूलन क्या होता है ये जानते हैं। अनुकूलन एक दोहरी प्रक्रिया के है जिसके माध्यम से बच्चे अपने आसपास के वातावरण के साथ प्रभावशाली रूप से नई संरचना का सृजन करते हैं, और इसमें आत्मसातीकरण यानी कि असिमिलेशन और एकोमोडेशन दोनों ही शामिल होते हैं। आत्मसातीकरण में व्यक्ति नई वस्तु, नए विचार या अनुभव को ग्रहण करता है तथा पहले से एग्जिस्ट कर रहे स्कीमेटा में जोड़ देता है। तो जो भी आपने जो नई लर्निंग की उसको आपने एग्जिस्टिंग जो आपके कॉन्सेप्शंस है उसमें आपने जोड़ दिया, जबकि जो एकोमोडेशन की प्रक्रिया में बच्चा अपने पहले से एग्जिस्ट कर रहे
स्कीमा में चेंज लेके आता
है। हाँ, चेंज लेकर आता है।
अच्छा जयंती जी, इसके अलावा बच्चों में जो है वो नैतिक विकास, सही क्या करना चाहिए, मुझे क्या नहीं करना चाहिए, इस चीज की समझ भी धीरे धीरे आती चली जाती है जैसे जैसे वो परिवार के लोगों के कांटेक्ट में आता है, और साथ साथ में जब वो लोगों, घर के लोग बाहर के लोगों के संपर्क में आता है तो उनसे भाषा भी सीखता चला जाता है। जितना उससे इंटरेक्शन किया जाता है, जितना उसको स्टिमुलेशन मिलता है, वो भाषा सीखता चला जाता है। जैसे शुरू शुरू में वो एक वर्ड बोलना सीखता है, जैसे अगर उसको पानी चाहिए तो वो ये नहीं कहेगा मुझे पानी चाहिए, वो केवल बोलेगा पानी। तो धीरे धीरे से दो शब्द और ऐसे करके वो एक सेंटेंस पर आता है।
व्यक्तित्व विकास का संबंध व्यक्ति के शारीरिक बनावट, स्वभाव, गुण, योग्यताएं, आकांक्षाएं, रुचि आदि से है। अब हम लोग कई बार किसी को देखते हैं, कोई बहुत अच्छा कपड़े पहनकर आए हैं तो हम बोलते हैं कि उसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, जबकि पर्सनालिटी जो होती है ओवरऑल जो एंड्योरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है लोगों की उसको पर्सनालिटी कहा जाता है। वो ऐसा नहीं है कि बाहर से आप कैसे दिख रहे हैं उसको पर्सनालिटी कहा जाता है,
बल्कि इसमें सभी एस्पेक्ट्स जितने अभी तक हमने पढ़े इंक्लूडिंग उसका सोशल इंटरेक्शन और वो किस तरीके से लोगों के साथ घुलता मिलता है, कैसे रिश्ते बनाता है, ये सारे एस्पेक्ट्स का एक बैलेंस जो डेवलपमेंट है वो उसके एक इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी फॉर्म करता है। इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी से तात्पर्य है कि दर्शकों जब भी हम व्यक्तित्व की बात करें तो उसमें सभी एस्पेक्ट्स का जो
इंटीग्रेशन होता है,
बैलेंस्ड एक विकास होना बहुत जरूरी है। अगर किसी भी विकास का रुकाव हो जाता है तो व्यक्तित्व का एक बैलेंस्ड फॉर्म या इंटीग्रेटेड फॉर्म निकल के नहीं आता।
तो श्रोताओ, आज आपने सुना कि हम लोगों ने यहाँ पर डेवलपमेंट के बारे में चर्चा की, डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, कौन कौन सी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं और इन स्टेजेस में क्या है। तो आपको जस्ट आज की इस चर्चा को समाप्त करने से पहले एक की वर्ड जो आपको बोलना चाहते हैं कि ये आपके लिए एक निर्धारक का काम नहीं करता है, रादर ये आपको एक डायरेक्शन देता है। तो आप जो भी पढ़ते हैं कहीं पर अगर आपको लगता है कि आपके अंदर वो चीज नहीं है तो उसको लेकर किसी तरीके से मन में कोई क्लू
गांठ ना रखे,
गांठ लेकर ना बैठे, रातर उसको रिजॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ये आपको जस्ट एक डायरेक्शन देने के लिए ये सारे जो आपके पॉइंट्स होते हैं वो दिए जाते हैं, और ये ओवर द टाइम रिसर्च से किए गए हैं, और इसमें वेरिएशन होना बहुत स्वाभाविक है। कल्चर टू कल्चर, पर्सन टू पर्सन, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, हमेशा वेरिएशन होता है। तो आशा करते हैं आज के कार्यक्रम में हम लोगों ने जो भी चर्चा की है उससे आपको बहुत ज्यादा सहायता मिली होगी, और अपनी चर्चा में आगे हम इसी के ऊपर और भी बात करेंगे। जहां तक हो सके हमारे टच में रहिए और इस लाइव पीसीपी को और थोड़ा सा इंटरैक्टिव और बनाइए।
नमस्कार।